ओम शांति। अभी हम सबका दूसरा सत्र आरंभ होने जा रहा है, जिसका सब्जेक्ट है स्वप्रबंधन की कला। तो हम विभिन्न कार्य क्षेत्र पर रहते हैं और हर चीज को मैनेज करने की हम सभी कोशिश करते हैं। तो मैनेजमेंट का जो कोर्स है, ये प्रोग्राम है, वैसे तो बाहर भी सिखाया जाता है, कई जगह पर इसका ट्रेनिंग दिया जाता है और उसमें हम सभी अपने अपने क्षेत्र पर, कोई मैन को मैनेज करने की कोशिश करता है, कोई मनी को, कोई मटेरियल को और कोई मशीन को। तो विभिन्न क्षेत्र पर विभिन्न रूप से हम विभिन्न चीजों का मैनेज करने का हम कोशिश करते रहते हैं, लेकिन हम अपने को मैनेज कैसे करें, अपने कार्य क्षेत्र पर रहते हुए सेल्फ को मैनेज कैसे करें, तो उसकी विशेष करके आज आप सभी को क्लास कराएंगे। हमारे बीच पहुंचे हैं आदरणीय भ्राता मोहन सिंगल जी। तो सबसे पहले हम इस दूसरा सेशन में आदरणीय भ्राता मोहन सिंगल जी का सभी करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। आदरणीय भ्राता मोहन सिंगल जी, आपका लौकिक जन्म देहरादून यूपी में हुआ। 1963 में आपने ग्रेजुएट करके फिर 1967 में मास्टर डिग्री प्राप्त की। समाज के विभिन्न क्षेत्र में आपने 28 वर्ष तक सेवा किया। वर्तमान समय ज्ञान सरोवर एकेडमी में होने वाले विविध ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आप कोऑर्डिनेट करते हैं। आप 1962 में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े। आपके द्वारा बिहार, आसाम, गुजरात में 1985 से ईश्वरीय विश्वविद्यालय में विभिन्न प्रकार के ईश्वरीय विश्वविद्यालय के शाखाएं खोलने के विशेष करके आप निमित्त बने। 1988 में साइंस एंड इंजीनियरिंग विंग्स के आप नेशनल कोऑर्डिनेटर बने। 1988 से आपको 1992 में भारत के एचआरडी मंत्री से पर्यावरण श्री नामक अवार्ड भी मिला है। आप विभिन्न विषय में एक दक्ष एवं अनुभवी ट्रेनर हैं, जैसे कि माइंड मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, सेल्फ एम्पावरमेंट, आर्ट ऑफ साइंस, पॉजिटिव थिंकिंग आदि आदि अनेक विषय पर आप लेक्चर भी देते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्षेत्र में सराहनीय कार्य होने के कारण आपको 2004 में इंटरनेशनल एजुकेशन फॉर वर्ल्ड पीस और कॉमनवेल्थ एसोसिएशन फॉर द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ एडल्ट्स नाम के अवार्ड से आप सम्मानित भी हैं। तो ऐसे महान हस्ती हमारे बीच उपस्थित हैं, आदरणीय भ्राता मोहन सिंगल जी। तो आज का जो विशेष सत्र है स्वप्रबंधन कला, हम अपने को प्रबंधन कैसे करें अपने हरेक क्षेत्र में रहते हुए, उसके विषय पर आदरणीय भ्राता आज प्रकाश करेंगे। तो मैं आदरणीय भ्राता जी को अनुरोध करती हूँ कि आज का सत्र आरंभ करें। ओम शांति।
ओम शांति। वास्तव में तो आज का विषय आपका, आज जो मॉर्निंग सेशन हुआ, पहला सत्र, किस विषय पर हुआ पहला सत्र, क्या विषय था उसका, आप कौन हैं, तो वहां से ही शुरू हो गया। सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ माने आत्मा। तो आपको आज पता चला, जो अभी तक तो हम यही समझते रहते थे कि मैं, जो भी हमारा शरीर का नाम है, रूप है, हम वो हैं। आज आपको क्या पता चला कि आप कौन हैं? आत्मा। तो उस विषय को ही और आगे बढ़ाते हुए कि किस प्रकार से हम स्व का प्रशासन करें, स्व पर शासन करें। अभी गीत भी चल रहा था ना, क्या गीत चल रहा था, मस्तक सिंहासन। तो आज आपको बताया गया होगा आत्मा कहाँ रहती है, यहाँ मस्तक और भ्रकुटी के बीच में, और यहाँ पर बैठ करके हम पूरे ये जो शरीर रूपी राजधानी है, इसका हम प्रशासन और कैसे करें, ये इसके ऊपर और आज हम विचार करेंगे। मुझे याद आ रही है एक कहानी, बचपन में पढ़ी थी, आप लोगों ने भी शायद पढ़ी हो बचपन की एक कहानी। पुराने जमाने की बात है कि चार दोस्त थे, मित्र थे, तो वो साथ साथ रहते थे। बड़े हुए तो उन्होंने सोचा अब कोई कला ट्रेड सीखना चाहिए, जैसे आजकल कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर, कोई वकील पढ़ाई करते हैं, ऐसे ही कुछ कला सीख करके आनी चाहिए। और पहले जमाने में तो बाहर गांव में ये रहते थे, बाहर कहीं दूर जाया करते थे कला सीखने के लिए। तो चारों ने ये निश्चित किया कि आज से हम 2 साल बाद यहीं पर इस स्थान पर इस समय ही मिलेंगे और इस 2 साल में हम कुछ जीवन की कलाएं सीख करके आएंगे। अलग अलग हो गए वो, और ठीक 2 वर्ष के बाद फिर वहीं पर वो मिले गांव में, जहां पर कि वो अलग हुए थे 2 साल पहले। उसके बाद वहां पर जब मिले तो बस गांव में चलते जा रहे थे, बहुत खुश थे चारों चार। 2 साल के बाद पुराने मित्र मिले हैं, बड़ी खुशी हो रही थी उन्हें। तो उसके बाद वहां पर वो रहे और चलते चलते गांव से जा रहे थे तो रास्ते में एक जगह हड्डियां पड़ी हुई थी कुछ जानवर की। तो पहले मित्र को एकदम याद आया, पहले को, अरे मैंने ऐसी कला सीखी है कि मैं इन हड्डियों को किस पशु की हड्डियां हैं उन्हें जोड़ करके बता सकता हूँ और उसे रूप दे सकता हूँ। तो उसने कुछ मंत्र वंत्र पढ़े जो कला सीख करके आया था, और वो जुड़ करके एक पशु का, बड़े पशु का रूप हो गया, शेर का सा देखने में आ रहा था। दूसरे ने कहा फिर कि मैंने ऐसी कला सीखी है कि इसके अंदर हड्डी मांस वगैरह, हड्डी जो है मांस और खून का संचार कर सकता हूँ। उसने भी कुछ मंत्र वंत्र पढ़े और देखा एकदम शेर का स्वरूप हो गया, लेकिन उसमें प्राण नहीं थे। तीसरे ने कहा कि मैं ऐसा विद्या सीख करके आया हूं कि इसके अंदर मैं प्राणों का संचार कर सकता हूं। तो बस वो शुरू करने जा ही रहा था कि चौथे ने बोला, अरे भाई आप लोग सोच लो कि आप क्या कर रहे हो, अभी अगर इसके अंदर प्राणों का संचार हो गया तो फिर इसका क्या रिजल्ट होगा। तो वो तो सब अपने नशे में थे बाकी तीनों, उन्होंने कहा अरे हमने अपनी, दो ने तो अपनी कला का प्रदर्शन कर दिया, अब मैं भी अपनी कला का प्रदर्शन करता हूं और इसमें क्या बात है। तो उसने कहा नहीं नहीं इसमें बहुत बड़ी बात है, आप समझ सकते हो। और उसने जब वो नहीं माना, नहीं मैं तो इसमें कला का प्रदर्शन करता हूं प्राणों का संचार, तो चौथे ने कहा ठीक है आप अपनी कला का प्रदर्शन करो, मुझे थोड़ा जाने दो यहां से। और वो वहां से गया और थोड़ा दूर जाके पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया। फिर जब आप समझ सकते हो क्या हुआ होगा, जब तीसरे ने भी मंत्र वंत्र पढ़े उसमें प्राण का संचार हुआ तो क्या हुआ, बस शेर ने वो जो तीन थे उन तीनों को मार डाला। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है, कौन सी सबसे बड़ी से बड़ी कला है। सेल्फ मैनेजमेंट की आज बात हो रही है ना, तो सबसे बड़ी कला कौन सी है जिसे लौकिक भाषा में तो हम कह देते हैं, दुनिया की भाषा में, भाई थोड़ा कॉमन सेंस, और साथ ही साथ अपने को, सब हमारे पास चाहे जितना भी हो, धन की, धन है, शक्ति है, कोई संपन्नता है, कुछ भी है, लेकिन किस कला को कहाँ यूज करना है उसकी भी बुद्धि होनी चाहिए। और साथ ही साथ कहां पर कितने रूप से किस ढंग से वो कला यूज हो। तो ये जो आर्ट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट थोड़ा सा, हेलो आर्ट, तो ये आज हम इस विषय के ऊपर चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से हम अपनी ये कला को, इसकी टिप्स क्या हैं वो बढ़ा सकते हैं। और इसमें पहले तो यही बताया गया कि सेल्फ क्या है, आज आपने सुना ना, आत्मा क्या है, गीत में भी क्या था, आत्मा क्या है, आत्मा राजन की बात है। ये आत्मा जो है एक राजा के समान है, सोल दी एम्परर, राजा, और ये राजा का ताज है और ये आत्मा जैसे चमक रही है। तीन आत्मा की आज आपको क्या वो बताया गया, उसकी तीन फैकल्टीज क्या क्या हैं? हाँ, मन, बुद्धि और संस्कार। हाँ, तो ये जो है मन, बुद्धि और संस्कार, ये आत्मा के तीन जो हैं कर्मचारी, जैसा आज बताया गया ना। और इसमें ये मन, मन अगर फेथफुल है, हमारे कहने पर चलता है अगर, तो एक तो वो है स्व प्रशासन। क्यों? कल भी बात हो रही थी ना, कल क्या बात हो रही थी, हम चाहते हैं बहुत कुछ करना लेकिन कर नहीं पाते। हम चाहते हैं गुस्सा ना आए लेकिन गुस्सा आ जाता है। हम चाहते हैं ये कमजोरी हमारे अंदर ना हो लेकिन वो कमजोरी आ जाती है। तो क्यों? क्योंकि मन मेरा मंत्री है, मन मेरा कर्मचारी है, फिर भी मुझ आत्मा राजा की बात को वो नहीं मानता, क्योंकि मन शक्तिशाली हो गया है, आत्मा राजा कमजोर हो गई है। तो स्वप्रशासन का एक है कि मन को हम शक्तिशाली कैसे बनाए। दूसरा बुद्धि, बुद्धि भी ऐसी हो जो आत्मा राजा के समर्पित हो, और आत्मा राजा के अगर समर्पित होती है बुद्धि, तो आत्मा राजा मन को जैसे चलाना चाहे, बुद्धि को जैसे चलाना चाहे, तो मन है मंत्री, बुद्धि है सेनापति। और मन और बुद्धि और तीसरा क्या है? संस्कार। तो मन है मंत्री, बुद्धि है सेनापति और संस्कार है सैनिक। तो मन को, मन मंत्री अगर हमारे कंट्रोल में होगा, बुद्धि सेनापति, तो ये जो है आत्मा राजा है। हा? इसीलिए किसी ने कहा है कि तू एक दिन भी जी, तू एक दिन भी जी, शहनशाह बन के जी, मत पुजारी बन के जी, खुद भगवान बन के जी। शहनशाह राजा होता है ना, तो राजा शासन करता है, पुजारी हम सब जो होते हैं सब माथा टेकते रहते हैं, तो इसीलिए शहनशाह हमारा इतना शासन हो, वो शासन कि खुद शहनशाह बन के जी और खुद भगवान बन के जी। तो ये कब हो सकता है? जब हम अपने पर प्रशासन की कला को जानते होंगे। तो ये जो है कहा गया है, इसीलिए आत्मा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सोल। और उस सोल का क्या मतलब होता है? हाँ, कभी ये जो शब्द होता है SOUL, यानी सब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सल लव। आत्मा जो है प्रेम स्वरूप है, सब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सल लव। इसीलिए कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, और ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो प्रेम व्यवहार में हमारे अगर प्रेम है तो वास्तव में वही पंडित है, कोई जो शास्त्र पढ़ा हुआ है, वेद पढ़ा हुआ है, वही। लेकिन जीवन में अगर उतारा हुआ नहीं है तो उसे पंडित या ज्ञानी नहीं कहेंगे। इसलिए आप यहाँ आए हो, देख रहे हो, और भी अभी आगे दो तीन दिनों में देखोगे, सारा कार्य कितना शांति से प्रेम से चल रहा है, सब एक दूसरे से मिलजुल के काम कर रहे हैं, कोई किसी पर हुक्म नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये संगठन का बल है, प्रेम का बल है। तो इसलिए पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, तो पोथी पढ़ने से ही नहीं होगा, लेकिन ये प्रेम को व्यवहार में, जीवन में लाना होगा। इसीलिए जीवन में कहा जाता है दो शब्द होते हैं, राग और द्वेष। तो वास्तव में प्रेम कोई बुरा नहीं है, प्रेम बहुत अच्छा है, लेकिन जब ये प्रेम अपनी शक्तियों के, अपने वस्तुओं के प्रति हो जाता है तो वो विकार बन जाते हैं। जब प्रेम अपने प्रति हो जाता है, ओ मैं धनवान हूँ, रूपवान हूँ, शक्तिवान हूँ, युवान हूँ, वो अहंकार का रूप ले लेता है। जब यही प्रेम अपने पजेशंस के प्रति हो जाता है, ओ मेरा मकान, मेरा घर, मेरा पैसा, ये सब जो पदार्थ हैं उनके प्रति अति प्रेम हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है? लोभ का रूप ले लेता है। जब यही प्रेम अपने संबंधियों, माता पिता, पति पत्नी, बच्चों के प्रति हो जाता है टू मच, तो वो क्या हो जाता है? वो ही मोह का रूप ले लेता है। जब यही प्रेम दूसरे के शरीर के प्रति, अपोजिट सेक्स के प्रति हो जाता है, वो काम का रूप ले लेता है। तो वास्तव में प्रेम का रूप जब बिगड़ जाता है, परवर्टेड हो जाता है, वो ही प्रेम विकार बन जाते हैं। तो बस यहां और कुछ नहीं करना है, असली स्वरूप को प्रेम करना है, लेकिन आत्मा से प्रेम करते हैं जब, तो वो प्रेम निखालिस होता है, उस प्रेम में शक्ति होती है और उस प्रेम से ही आत्मा महान बन जाती है। तो अब ये प्रेम का कैसे करेंगे, ये आत्मा को कैसे शक्तिशाली बनाएंगे, वो आत्मा को शक्तिशाली बनाने का भी ये विधान है। देखो ये व्यक्ति एक बैठा हुआ है, ये तीन चीज आपने सुनी है ना, तो मन, ये मन का काम है सोचना, तो मन बस सोचता रहता है जैसे बताया, और अच्छा बुरा कोई कल्पना में चला जाएगा, भय की बात, ईर्ष्या, क्रोध, सब चीजें सारे दिन में अगर आप देखोगे तो मन के अंदर बहुत सारे विचार पैदा होते हैं। आज आपको बताया भी गया होगा बहुत कितने विचार आते हैं। तो मन को अगर हम, जब ये है व्यक्ति तो मन ऐसा होता है, और अगर मन को हम स्मूथ बना देते हैं, कोने निकाल देते हैं, तो मन हमारे नियंत्रण में आ जाता है। तो ये है मन को जीतने की कला। इसी प्रकार से बुद्धि, बुद्धि कई बार निर्णय नहीं ले पाती सही क्या है गलत क्या है, ये करूं या ये करूं, और जब निर्णय नहीं ले पाती है तो फिर मनुष्य थोड़ा तनाव में आ जाता है। और इस कारण से फिर योग के द्वारा सेल्फ एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण, तो जो आत्मा को प्रशासन करना है, अगर आत्मा को शक्तिशाली बनाना है, सेल्फ एम्पावरमेंट करना है, तो उसके लिए आवश्यकता है बुद्धि को भी हम ऐसा बनाएं कि सही समय पर वो सही निर्णय ले सके, और जब सही समय पर सही निर्णय होगा तो जीवन में सफलता मिलेगी, और जहां सफलता मिलती है वहां फिर खुशी होती है। और इसी प्रकार से ये है संस्कार की बात। तो संस्कार, हाँ, अनेक प्रकार के जो भी हम कर्म करते हैं वैसे संस्कार बनते जाते हैं। तो ये इसके अंदर बताया गया है, पुराने जमाने में भी ना ग्रामोफोन होता था और रिकॉर्ड होता था, देखा है किसी ने? बहुत पुराने उसमें, अभी तो सीडी प्लेयर, कैसेट, सब कुछ है। तो उसमें भी कई बार जब वो पुराना हो जाता था, घिस जाता था, ऊपर सुई रखते थे तो सुई अटक जाती थी, और वही 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 चीजें बार बार, वही बात, वही शब्द बार बार आते थे। तो ये संस्कार भी ऐसे हैं, कई बार हम पुरानी बातों को भूलना चाहते हैं, कोई अच्छी बात नहीं होती है, बार बार जीवन को कचोटती रहती है, भूलना चाहते हैं, भूल नहीं पाते, वहां पर जैसे समय रूपी सुई अटक जाती है न चाहते हुए भी। तो योग के द्वारा, स्वप्रशासन के द्वारा, उस को हम इतना रेगुलेट कर दें कि वो हमारे ये संस्कार जो है ना, ये हमारे कंट्रोल में रहे। पुराना संस्कार कह के कि भाई क्या करूं, ये चाहता नहीं, ये बात हो जाती है, ऐसा ना हो। क्यों? क्योंकि वो ही संस्कार, जैसा संस्कार होते हैं उसी के अनुसार मनुष्य जीवन में सुख या दुख अथवा शांति की, शक्ति की, वो सब अनुभूति करता है। तो इसीलिए ये है सेल्फ मैनेजमेंट स्व प्रशासन। अब आज का मनुष्य जो है ना, ये क्या है? मकड़ी का जाला। आज का मनुष्य इसमें जैसे कि फंस गया है, और ये फंसने के कारण वो दुख और अशांति का अनुभव करता है। ये देखिए, और ये मकड़ी का जाला, ये जो विकार हैं, ये मनुष्य को जैसे नचाते रहते हैं, और ये उसकी कमजोरियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि। तो ये सब जितने बातें हैं मनुष्य के अंदर, इच्छाएं, कल भी बता रहे थे ना यहाँ पर गीता बहन जी की, मनुष्य की जितनी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, उतना इच्छाओं, सारी इच्छाओं की पूर्ति तो होती नहीं। इसीलिए कहा है कवि भरत हरि होके गए हैं बड़ा अच्छा, कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न याति वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। कि हम भोगों को नहीं भोगते, लेकिन भोग हमें भोगते हैं। जैसे मनुष्य शुरू शुरू में सिगरेट बीड़ी पिएगा, वो सोचेगा बड़ा अच्छा है, लेकिन धीरे 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 वो उसका गुलाम बन जाता है, छोड़ना चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाता। तो तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न याति वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। समय ही केवल तीव्र गति से नहीं भाग रहा, बल्कि हम सब भी समय यानी काल की तरफ तीव्र गति से भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णाएं, इच्छाएं, वो कमजोर नहीं होती, हमारी उम्र धीरे 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 बढ़ती जाती है, हम कमजोर होते चले जाते हैं, लेकिन तृष्णाएं, इच्छाएं, वो और जवान, वो और बलवती होती चली जाती है। तो आज का मनुष्य ऐसी परिस्थिति में आ गया है, न चाहते हुए भी वो चाहता है इससे निकलना, कमजोरियों से निकल सके, लेकिन मकड़ी के जाले की तरह वो फंसा हुआ है। और इस कारण से कैसे वो करे, इसलिए कहा गया है कि संसार में कई प्रकार के ना होती हैं व्याधियां, आदि व्याधि और उपाधि, यानी सब प्रकार की जो समस्याएं हैं उन्हें तीन भागों में बांटा है, भाई तन की समस्या है, धन की है, और परिस्थितियों की समस्या है, कई प्रकार की हैं, आदि व्याधि उपाधि, और इनका उपाय क्या है? समाधि। समाधि माने कोई घर बार छोड़ के जंगल में पहाड़ों पर नहीं चले जाना, वो नहीं, मन को समाधिस्थ कर लेना। बस जो मन को समाधिस्थ करना जानता है, मन को जब चाहे जिधर की तरफ चाहे उधर की तरफ मोल्ड करना चाहता है, जानता है, वो फिर आदि व्याधि उपाधि इन सब से बच सकता है। उसी को ही आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से अगर हम इस मकड़ी के जाले से ना निकलना चाहते हैं, तो ये परमपिता परमात्मा के साथ ना, ये जो ऊपर स्टार जैसा दिख रहा है, इसके साथ अगर हमारा बुद्धि योग होगा, योग लगाएंगे, तो ये मकड़ी के जाले से जैसे मनुष्य बाहर आ जाता है, और फिर जीवन में खुशी और शांति का, शक्ति का अनुभव कर सकता है। लेकिन ये होगा कैसे, उसी को ही आज हम लोग ये देखने जाते हैं, और इसको जितना जितना हम अनुभव करते जाएंगे, सुनते भी जाएं, सुनने के साथ साथ उस चीज का अनुभव भी करते जाएं। अभी जैसे समझे कि बस हाँ, मेरे अंदर से ये कमियां, कमजोरियां, ये सब बाहर निकलती जा रही हैं। मैं जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, पर चिंतन, पर निंदा, इन सब से जैसे मैं बाहर हूं, और मैं एक स्वप्रकाशित आत्मा हूं। बस धीरे धीरे इसका भी अनुभव सुनने के साथ साथ उसकी अनुभूति करते जाएंगे, तो अपने अंदर शक्ति का भी अनुभव करते जाएंगे। इसीलिए भगवान को कहा गया, शरीर तो हमारा पांच तत्वों का बना हुआ पुतला है ना, प्रकृति का। तो इसीलिए ये जो भगवान शब्द है, किसी ने बड़ा अच्छा कहा है कि ये भगवान कहा ही उसे जाता है जिसकी अपने इस प्रकृति के तत्व के ऊपर, प्रकृति के ऊपर पूरी विजय हो। और इसीलिए भगवान शब्द की व्याख्या करते हुए कहा है भ, भ अर्थात भूमि, ग ग गगन, व वायु, व के आगे जो डंडा है अ वो अग्नि यानी सूर्य, और न अर्थात नीर जल। तो जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और गगन आकाश, जो इन सब पांच तत्वों को भी वश में करना जानता है, यानी हमारा ये शरीर भी इन्हीं पांच तत्वों का ही तो बना हुआ है। तो इन पांच तत्वों से बने हुए शरीर पर अगर हम विजय प्राप्त करते हैं, जैसा परमात्मा भगवान के लिए बोला जाता है, तो हम भी जैसे कि मास्टर भगवान, मास्टर भगवती बन सकते हैं। यानी इन शरीर के तत्व, तो आत्मा के तो ये तीन कर्मेंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, और शरीर के ये जो पांच तत्व हैं, ये अलग अलग कर्मेंद्रियां, आंख, नाक, कान, हाथ, मुंह, त्वचा आदि, ये सब, लेकिन ये इन्हीं पांच तत्वों के बने हैं। तो इसीलिए इन तत्वों, पांच तत्वों के बने हुए शरीर पर अगर हम अपना नियंत्रण करना जानते हैं ना, वो ही स्वप्रशासन है। अब स्वप्रशासन के इन एक एक पहलू को हम ये देखते चलेंगे कि ये स्वप्रशासन के जो हमारे पहलू हैं, ये जीवन को हम जीवन में किस तरीके से इस्तेमाल करें, कैसे हम स्व पर प्रशासन करें, हम जो चाहें वैसा हो, ऐसा ना हो कि हमें गुस्सा आया और बस एकदम कुछ कार्य कर बैठे जो हम नहीं चाहते, मुंह से ऐसे शब्द निकल गए जो हम बाद में कहते हैं नहीं चाहते। वो क्यों होता है? क्योंकि जीवन को हम ना संपूर्ण रीति से नहीं जीते। जीवन को हरेक ने कहा है, अलग अलग कहा है कि लाइफ, जीवन, किसी ने कहा है भाई जीवन तो बहुत एक बगीचा है, बहुत अच्छा है। जो व्यक्ति जैसा होके गया, जीवन एक ब्रिज के समान है, उसे क्रॉस करो। जीवन एक जर्नी है, जीवन एक यात्रा है, वो यात्रा करो। जो जैसा आशावादी है उसने आशावादी बात करी, जो निराशावादी है उसने निराशावादी बात करी। एक यहां पर शिक्षक भी आए थे, उन्होंने शिक्षक रीति से बताया, क्या करा जीवन की परिभाषा कि जिंदगी है एक सेंटेंस, जिंदगी है एक सेंटेंस, इसे खुद ही समझो, जवानी डैश, जिंदगी है एक सेंटेंस, इसे खुद ही समझो, जवानी डैश, बुढ़ापा कॉमा, मौत को फुल स्टॉप समझो। सेंटेंस में क्या होता है? डैश होता है, कॉमा, फुल स्टॉप आदि। तो जिंदगी की भी यही परिभाषा बता दी कि जिंदगी है एक सेंटेंस, इसे खुद ही समझो, जवानी डैश, तनी हुई होती है, बुढ़ापा कॉमा, कॉमा की तरह कमर झुक जाती है तो कॉमा जैसा बन जाता है, और मौत को फुल स्टॉप, जीवन वहां रुक गया। तो अलग अलग परिभाषाएं की हैं, लेकिन जिंदगी की संपूर्ण परिभाषा इन चार शब्दों के अंदर ही आ जाती है, लाइफ। हाँ, तो पहले ये जो दो शब्द है ना, ये इसके अंदर बताया है कि लुक इंटरनली फॉरवर्ड एक्सटर्नली, एल आई, लुक इंटरनली, एक जीवन का आंतरिक पहलू है, और फॉरवर्ड एक्सटर्नली एक जीवन का ये बाह्य पहलू है। तो हम सब आगे तो बढ़ना चाहते हैं, जैसे इसमें बताया गया है, ऊपर और आगे आगे आगे, ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, प्रमोशन हो, ज्यादा ज्यादा सुख हो, संपत्ति हो, सब कुछ हो, ठीक है, होना भी चाहिए, अच्छी बात है, जीवन के लिए ये आवश्यक है। लेकिन इसके साथ साथ जीवन के अंदर आंतरिक पक्ष भी है जीवन का, क्योंकि जीवन में इस प्रोसेस में, आगे बढ़ने के प्रोसेस में कई बार टेंशन होता है, कोई डिप्रेशन हो जाएगा, कोई एंग्जाइटी हो जाएगी, चिंताएं, बहुत कुछ, तो उसका सामना करने के लिए जीवन में आंतरिक शक्ति चाहिए। इसलिए ये जो चार लेटर का वर्ड है, तो जीवन को अगर हम संपूर्ण रीति से जीते, तो अभी आप एक ये सीख करके जाइए कि हमें केवल इसी में ही पूरा समय नहीं लगा देना है, भौतिक वादों में, बल्कि उसके साथ साथ जीवन का ये आध्यात्मिक पक्ष है। तो इसीलिए किसी ने बड़ा अच्छा कहा, ये जीवन भी दो टांगों की तरह है, हो के मायूस नहीं हो, हो के मायूस नहीं हो, शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है, सूरज से निकलते रहिए। एक ही पांव से चलोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही, दोनों पांव से आगे बढ़ते रहिए। ये दोनों पांव क्या है? एक है भौतिकवाद, आध्यात्मवाद। भौतिकवाद मेटरलिज्म, स्पिरिचुअलिज्म। तो अगर दोनों टांगे होंगी ना, व्यक्ति आराम से चल सकता है। लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली हम सब एक ही टांग से ज्यादा चलते हैं, मेटेरियलिज्म, भौतिकवाद को, बस वही जीवन में सारा समय ले लेता है, और इसमें के द्वारा जो आंतरिक शक्ति आनी चाहिए वो नहीं आ पाती। तो इसीलिए एक तो अपने अंदर ये देखते चलना है हमें कि मैं दोनों टांगों से, यानी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों बातों का बैलेंस रखूं। तो एक तो ये बात करिएगा। दूसरी बात क्या है? हाँ, इस शब्द को और गौर से देखिए जरा, ये लाइट तेज करना भाई, इधर वाली LIFE। हाँ, ये जो चार अक्षर का है, इसमें ये बीच के दो अक्षर क्या है? IF, इफ। हाँ, ये क्या प्रदर्शित करता है कि चार में से दो, यानी कि हमारा आधा जीवन जो है ना, वो इफ में चला जाता है, यानी भूतकाल की बात। इफ आई हैव नॉट डन दिस थिंग, दिस वुड नॉट हैव हैपेंड। इफ आई हैव टेकन दीज स्टेप्स, रिजल्ट्स वुड हैव बीन डिफरेंट। इफ, यदि, काश मैं ऐसा करता ऐसा हो जाता, अगर ऐसा नहीं करता तो बहुत अच्छा हो जाता, आदि आदि। इफ, आधी जिंदगी हमारी भूतकाल में निकल जाती है। आप देखो, कई बार पुरानी बात याद आती रहेंगी, इसीलिए वो होके गए हैं पुराने मनीषी, उन्होंने बड़ा अच्छा कहा है इसके लिए, जिंदगी को जैसे चक्की की तरह बताया, हा? कि दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। पुराने जमाने में चक्की होती थी ना, तो घर में माताएं उसी में अनाज वगैरह पीस लेते थे, अनाज डाला पीस गया। तो ये दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई, ये दो पाटे, एक है भूतकाल, एक है भविष्यकाल। या तो हमारे अंदर भूतकाल की बात याद आती रहेगी, भाई ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, उस बात को भूल नहीं पाएंगे, या भविष्य की चिंता, क्या होगा, अभी तो घर में मकान बनाना है, बच्ची की शादी करनी है, अभी तो ये काम है, वो काम है, भविष्य की चिंता या भूतकाल का चिंतन, उसमें ही मनुष्य जो है पिस जाता है। क्या करे फिर, कि दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई, चक्की है और चक्की में देखोगे बीच में जो अनाज रह जाता है ना थोड़ा सा, वो साबुत रह जाता है, वो पिसता नहीं है। तो दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई, और खूंट पकड़कर जो रहा उसे पीस सका ना कोई। बीच में अनाज होता है ना, तो वो है वर्तमान, प्रेजेंट। तो इसलिए जो वर्तमान में जीना जानता है उसे कोई पीस नहीं सकता, कोई परिस्थिति आए, कोई बात हो, वो पिसेगा नहीं। यानी कि परिस्थिति के ऊपर वो विजय प्राप्त कर लेगा, परिस्थिति उसे पराजित नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो वर्तमान में जीना जानता है। तो इसीलिए एक ये यहां से लेकर के जाओ कि मुझे हमेशा वर्तमान में जीना है, प्रेजेंट में। इसका भाव क्या हुआ? अभी आप यहां पर हो, है भाई, लेक्चर सुन रहे हो। अभी ही अगर आपको यहां बैठे बैठे ही ना कोई घर की बात याद आ गई, बच्चे की बात आ गई, बिजनेस की बात याद आ गई, या चार दिन पहले ये हुआ, आप जैसे पास्ट में चले गए। फिजिकली यहां बैठे हैं, भौतिक रूप से शरीर यहां है, लेकिन मन कहां चला गया? कहीं और चला गया। तो यानी पास्ट में चले गए। इसी तरह कोई बात, अरे अभी या तीन चार दिन तो अच्छा है, फिर ये जाना है, वो काम करना है, ऐसा भविष्य काल में चलेगा। तो अगर भूतकाल और भविष्य काल में रहे तो वर्तमान का आनंद नहीं ले सकते। तो वर्तमान का आनंद लेने के लिए यहां पर शरीर के साथ साथ आत्मा को भी, मन को भी यहां पर रखना जाने। और जिसका वर्तमान अच्छा है ना, उसका आज जो वर्तमान है, प्रेजेंट है, कल वो क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा। तो इसलिए आज 4 तारीख है, प्रेजेंट है। कल 5 तारीख होगी तो 5 प्रेजेंट हो जाएगा और 4 पास्ट हो जाएगा। तो अगर वर्तमान को हमने अच्छा बना लिया तो हमारा पास्ट भी अच्छा हो जाएगा, और जिसका पास्ट और प्रेजेंट अच्छा है उसका फ्यूचर तो अच्छा होना ही होना है, क्योंकि पास्ट और प्रेजेंट ये नींव है। तो पास्ट नींव है, प्रेजेंट उसका वर्तमान बिल्डिंग है, और फ्यूचर जो है आगे की भविष्य की योजना है। तो इसीलिए सदा वर्तमान में जियो। तो ये जीवन जीने की एक और कला है। साथ ही साथ और क्या है इस वर्ड में, और क्या विशेषता दिखाई देती है आपको? हाँ देखो, ये आधा जीवन हमारा इसमें है, और फिर अगर इसे और देखो, ये F निकालो तो LIE क्या है ये? हाँ, यानी 3/4, 4 में से 3 अक्षर, 3/4 जीवन हमारा ना लाई में ही गुजर जाता है, झूठ में गुजर जाता है। कौन सा झूठ? LIE, कौन से झूठ में? क्योंकि ऑन एन एवरेज आजकल जीवन को माना जाता है लगभग 80 साल का जैसे जीवन है, 80 ईयर्स। तो 80 साल के जीवन का 3/4 कितना हो गया? 3/4, 60 साल हो गया। तो हम अक्सर करके कह देते हैं कि अच्छा, बात तो अच्छी है भाई, बहुत अच्छी है, लेकिन अभी फुर्सत कहाँ है, अभी तो ये काम है। जब हम रिटायर हो जाएंगे, बच्चों की शादी वादी हो जाएगी और बिल्कुल कोई काम नहीं, तब हम भगवान को याद करेंगे, तब हम ये बातें जो हैं, तब हम आश्रम में जाएंगे, योग करेंगे, अक्सर करके हम ये सोच लेते हैं। लेकिन उससे क्या होता है कि आज हमें तनाव है जीवन में, आज टेंशन है, कोई चीज है डिप्रेशन, आज मुझे बुखार हो और मैं सोचूं चलो भाई मैं 15 दिन के बाद बुखार की गोली खा लूंगा, उससे कुछ फायदा होगा? नहीं। आज जो समस्या है उसका निदान तो आज ही करना पड़ेगा ना। तो इस कारण से ये जो है 3/4 जीवन हमारा लाई में, इस लाई में चला जाता है कि भाई मैं शरीर हूं, शरीर के काम धंधे नौकरी उन सब में हम बिजी हो जाते हैं, और 60 साल तक, 80 साल की उम्र में और 60 साल में ज्यादातर करके रिटायर होते हैं। तो बस 60 साल तक जब हम रिटायर जैसे हो जाएंगे, उसके बाद फिर हम ये सब बात करेंगे। तो इसलिए वो लाई जो बताया ना, ये जीवन का सत्य को हम भूल जाते हैं कि मैं वास्तव में आत्मा हूं और ये आत्मा इस शरीर को चला रही है, ये भूल जाते हैं। हम अपने को शरीर ही समझते हैं, मैं ये हूं, मैं किसान हूं, मैं नौकरी करता हूं, डॉक्टर हूं, वकील हूं, इंजीनियर, कुछ भी समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में है हम आत्मा, और ये शरीर के द्वारा हम कर्म कर रहे हैं, और इस सृष्टि रूपी नाटकशाला में हर एक को ये पार्ट मिला है, खेल मिला हुआ है कि वो उसके द्वारा जो भी पार्ट बजाए। तो इसलिए अभी ये समझना है, इस लाइफ शब्द के अक्षर में स्थित होना है। इसके द्वारा कितने मैसेज मिले इस शब्द के द्वारा? हाँ, क्या क्या? एक तो ये कि जिंदगी को हम संपूर्ण रीति से जिए, दोनों टांगे भौतिक और आध्यात्मिक। दूसरा, वर्तमान में जिए, पास्ट और फ्यूचर, पास्ट से हम सबक लें, उसके अनुभव से शिक्षा लें, और भविष्य की प्लानिंग करें, लेकिन जिए वर्तमान में। और तीसरा ये कि सदा ये समझ के कि मैं आत्मा हूं, इस शरीर के द्वारा इस सृष्टि नाटक पर पार्ट प्ले कर रही हूं, खेल खेल रही हूं। इस दृष्टिकोण के साथ अगर हम जब इस सृष्टि रूपी नाटकशाला में खेल खेलते हैं ना, तो ये फिर बहुत हमारे लिए मददगार हो जाता है। और इसीलिए स्वप्रशासन की कला कौन सी है? सबसे बड़ी कला जो इसमें बताई गई है कि ये स्वप्रशासन में, दुनिया में अनेक प्रकार के वंडर्स हैं, अनेक प्रकार की चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो वंडर है वो मनुष्य का मस्तिष्क है। क्योंकि अभी अभी यहां बैठे हुए हैं, और इसको वैज्ञानिक लोग इस तरीके से बताते हैं कि देखो, दुनिया में सबसे तेज गति से चलने वाली क्या चीज समझी जाती है? मन। मन तो ठीक है, लेकिन स्थूल चीज जिसे साइंटिस्ट ने नापा भी है, प्रकाश लाइट, लाइट की गति बहुत तीव्र मानी जाती है, समझा जाता है लाइट जो है ना एक सेकंड में ना 186,000 माइल्स, यानी कि करीब 3,00,000 किलोमीटर लाइट एक सेकंड में, लाइट जो है 3,00,000 किलोमीटर चली जाती है, तो इतना तेज लाइट की गति है। और सूरज से इतना दूर सूरज है, सूरज से यहां तक लाइट आने में पता है कितना टाइम लगता है, बताया होगा करीब 8 मिनट, 8-8.5 मिनट लगते हैं सूरज से यहां धरती तक लाइट आने में, 8 मिनट। और एक सेकंड में लाइट चलती है 3,00,000 किलोमीटर एक सेकंड में, तो समझो एक सेकंड में 3,00,000 हुए और एक मिनट में कितने हुए, और 8 मिनट तक, इतना तेज मतलब ये इतना दूर है सूरज। और यहां बैठे बैठे ही अगर हम सूरज की कल्पना कर ले बस मन से, अरे भाई इतना गर्मी है और सूरज के द्वारा ये जीवन मिलता है, सूरज की बात है ना, सूर्य, तो बस वो तो एक सेकंड में हम सूरज तक पहुंच गए, मन के द्वारा तो हम सेकंड में सूरज तक पहुंच गए। तो मन की गति तीव्र हुई या प्रकाश की गति तीव्र हुई, मन इतना फास्ट है मन, तो इसीलिए सबसे बड़े से बड़ा आश्चर्य मन को कहा गया है। इसीलिए कहा जाता है, मतलब दुनिया भर में माना जाता है कि मन, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो मन से अगर हार गया ना, यानी जीवन से निराश हो गया, वो हार गया, और जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये कहा जाता है। तो मन इतना बड़ी चीज है, और ये मन को इसीलिए कहा जाता है, मन तो घोड़े की तरह है और ये संसार सागर है, मन इसमें घोड़े की तरह है, बस मन दौड़ा जा रहा है। और कहते हैं कि हम संसार में रहें लेकिन संसार हमारे मन में ना रहे, हमें तो संसार में रहना है, संसार को छोड़ के नहीं जाना है कि चलो भाई शांति के लिए और ज्ञान के लिए भगवान को पाने के लिए छोड़ छाड़ के घर गृहस्थी को चले जाए पहाड़ों पर जंगल में, नहीं उससे कोई प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन रहे हम संसार में, जिस काम को हमने लिया है परिवार का पालना करना, वो हमारा फर्ज है, नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन संसार में रहते हुए भी ना हम संसार में ना रहे, हमारे मन में संसार ना रहे, दुनिया भर की फालतू बातें, वो ऐसा कर रहा है उसको ये नहीं करना चाहिए, जितना जितना मन को हम फालतू निगेटिव संकल्पों में लगा देते हैं उतना उतना मन कमजोर होता चला जाता है। इसीलिए अपने को ये देखते चलना है कि मन जो है ना, बस मन को हम ऐसा करें जो मन, तो मन है क्या, इसमें यही बताने का कोशिश की गई है कि मन जो है ना वास्तव में विचार शक्ति का नाम है, जो आपको बताया गया है। और तो स्व प्रशासन की सबसे बड़ी कला यही है कि हम मन को जाने, अपने विचारों को जाने, जिस तरीके से हम विचारों को मोड़ना चाहें वैसे हम विचारों को मोड़ सके, ये है स्व प्रशासन की कला। तो इसमें एक एक चीज को आप देखते जाइए कि किस प्रकार से हम विचारों को मोड़ सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं। देखिए ये मन है, हाँ? तो मन क्या है, मन की एक शक्ति का नाम है सोचना, थिंक, मन विचार करता है। और मन की दूसरी शक्ति का नाम है मन महसूस करता है, फील करता है। कोई भी चीज की फीलिंग आती है अच्छी या बुरी, किसी ने बहुत सम्मान दिया खुश हो गए, अपमान हुआ दुख हो गए, तो फीलिंग वो काम मन का है, वो शरीर नहीं, शरीर के द्वारा चाहे हो लेकिन महसूसता मन करता है, और मन ही कल्पना करता है, इमेजिन। इसीलिए कहा गया है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। तो अनुभव, हाँ अभी आपने अनुभव कर लिया भाई चीनी जो है मीठी होती है। अब कोई जितना भी बोले नहीं नहीं चीनी कड़वी होती है, आप मानेंगे नहीं, अनुभव कर लिया। रसगुल्ला है मीठा होता है, बस आप मानेंगे अनुभव किया हुआ है, इसलिए वो। तो इसीलिए जीवन में जो कल्पना और अनुभव के आधार पे चीज होती है और वो ही व्यक्ति स्वीकार करता है, और साथ ही साथ फॉर्म आइडियाज, और इन्हीं के आधार पे मन जो है अपने विचार बनाता है। तो इसीलिए अभी ये करना है कि ये मन जब करता है, मन के अंदर ये शक्तियां हैं, तो इन शक्तियों के आधार पर व्यक्ति क्या कर सकता है, सब सुख दुख मान अपमान निंदा स्तुति हार जीत हानि लाभ सब चीज का मन जो है अनुभव करता है, और उस अनुभव के आधार पे मन जो है अपने जीवन की गति को आगे बढ़ाता रहता है। तो इसीलिए देखते चलना है कि कैसे हम मन को वो करें, प्रशासन में अपने रखें। अब अलग अलग प्रकार के मन के अंदर विचार आते हैं, कितने विचार आते हैं, अलग अलग हैं। एक है पॉजिटिव थॉट्स, अच्छे विचार आते हैं। तो स्व प्रशासन माने मुख्य रीति से मन का प्रशासन। तो पॉजिटिव थॉट्स कौन से होते हैं, आज आपको आत्मा के कितने गुण बताए गए, कितने गुण होते हैं, हाँ बोलिए जरा, कौन कौन से गुण होते हैं बोलिए, हाँ गुड, सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता ज्ञान और शक्ति, बहुत अच्छा। तो ये सब आत्मा के गुण होते हैं, और इन्हीं से ही ना जो चीज प्रेरित होती है, यही जीवन के अंदर यही पॉजिटिव थॉट्स हैं। जिन चीजों से मनुष्य को शांति का अनुभव होता है, शक्ति का अनुभव होता है, ये पॉजिटिव थॉट्स हैं। ओके, दूसरे थॉट्स जो है वो है निगेटिव थॉट्स। इसके विपरीत जो थॉट्स हैं, प्रेम के विपरीत क्या है, हाँ दुश्मनी, और शांति के विपरीत क्या है, अशांति, सुख के विपरीत क्या है, दुख। तो जो चीज जो आत्मा के सात मौलिक गुण है, उनके विपरीत जिन चीजों की अनुभूति होती है, वो जैसे नेगेटिव विचार जो है उन चीजों की अनुभूति कराते हैं, पॉजिटिव थॉट उनकी अनुभूति कराते हैं, नेगेटिव थॉट्स ये दुख अशांति ईर्ष्या द्वेष उन सब की अनुभूति। तीसरे एक विचार होते हैं वेस्ट थॉट्स, जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। कौन से वेस्ट थॉट्स, जैसे अभी बताया आपको पुराने पास्ट के विचार, कोई बात हो गई 2 साल पहले हो गई, 4 साल बात हो की पहले की बात है, लेकिन वो बात बार बार याद करके ना हमारे अंदर जो है उस बात को अगर हम भूलना चाहें तो भी नहीं भूल पाते हैं, तो वो जैसे कि वेस्ट टाइम हमारा और एनर्जी वेस्ट चली जाती है। और साथ ही साथ इसके होता है नेसेसरी थॉट, आवश्यक विचार जो होते हैं, जो घर गृहस्थी के विचार, नौकरी धंधा जाना है, बच्चों को तैयार करना है, स्कूल भेजना है, खाना पकाना है घर में, पैसा कमाने जाना है आदि आदि, ये सब जीवन के आवश्यकता। तो ये जो है विचार, कोशिश प्रयास ये होना चाहिए कि हमारे विचार ज्यादातर ये पॉजिटिव हो, प्लस जो कि सुख शांति आनंद पवित्रता प्रेम ज्ञान और शक्ति से जो जागृत हो हमारे विचार। तो वो ये कार्य होता है योग के द्वारा और ज्ञान के द्वारा, जिसके लिए आप यहाँ आए हो ना। तो आज सुबह से जो भी क्लास शुरू हुई है उसका लक्ष्य यही है कि आपके अंदर ये जो मौलिक गुण हैं आपके अंदर, लेकिन हमें मालूम नहीं है, सुख की जगह दुख ने स्थान ले लिया, शांति की जगह अशांति ने, प्रेम की जगह कुछ और ईर्ष्या द्वेष आदि ने, तो इस कारण से ये विचारों को हमें अब फिर से रिवर्ट करके ओरिजिनल विचारों में लाना है, और इसी के लिए आप यहाँ पर आए हैं या आपको बुलाया गया है। अब देखो हाँ, विचारों की गति, अपने गति से आप जान सकते हैं विचार कैसे हमारे चल रहे हैं, देखिएगा, गौर करिएगा, जो हमारे ना स्पीड ऑफ थॉट्स जो होते हैं, जो निगेटिव विचार होंगे ना बहुत तीव्र चलेंगे, मानो किसी ने आपको अपमान कर दिया और एकदम है चाओटिक वो बहुत एकदम, तो उसकी गति बहुत फास्ट होगी उसके, बस ये क्यों ऐसा क्यों, वो अपने को क्या समझता है, उसने मेरा ये कर दिया अपमान कर दिया, तो बहुत ज्यादा जब विचार चले तो समझना चाहिए वो बहुत निगेटिव विचार है किसी के प्रति, या तो मेरे अहंकार के कारण वो पैदा हो रहे हैं, या वो विचार जो है ना अपने को मैं शरीर समझ के समझ रहा हूं कि मेरा अपमान किया गया इसलिए हो रहे हैं, तो इसी के साथ ही साथ जो वेस्ट थॉट होते हैं उनकी गति भी काफी फास्ट होती है, लेकिन निगेटिव विचार जितनी नहीं होती है, वो है वेस्ट, पुराने विचार आ रहे हैं, साथ ही साथ जो साधारण विचार हैं वो ऑर्डिनरी गति से चलते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव विचार है ना वो बहुत कम विचार आएंगे मन में और वो विचार की गति भी कम होगी। इसीलिए यहां आपको अभ्यास कराया जाता है, आज भी अभ्यास कराया होगा ना, जब सुबह आत्मा की क्लास हुई होगी उसके बाद आपको थोड़ा लाल लाइट जला के अभ्यास कराया ना योग का, भाई मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं, तो जैसा जैसा बहन जी बोलते गए उन विचारों में भी यदि हम बहते चले जाते हैं ना, बस उतने ही विचार आएंगे, इतने कम गति से, ये समझना चाहिए ये हमारे पॉजिटिव विचार है। तो इसीलिए यहां ये अभ्यास कराया जाता है आपको, आप ये अभ्यास पक्का करके जाना, जिससे जब आप अपने घर में भी जाओ ना तो सकारात्मक विचार आए, पॉजिटिव विचार आए, नेगेटिव विचार आत्मा की शक्ति को खत्म कर देते हैं, और उसका प्रमाण यह होगा नेगेटिव विचार आ रहे हैं दूसरे के लिए, पर चिंतन चल रहा है, पर निंदा हो गए, अपमान की महसूसता, व्यक्ति जो है भिन्न भिन्न परिस्थितियों में समान नहीं रह पाता, जो कहा गया है कि मान अपमान निंदा स्तुति हानि लाभ दुख सुख सब में समान रहे, वो नहीं हो पाता, इसीलिए ये अच्छी तरीके से अभ्यास करके आप जाए जीवन में ना। इसमें यह बताया गया है कि कोई भी इवेंट जो है अच्छा या बुरा नहीं होता, कोई भी घटना, लेकिन वो हम उसे किस दृष्टिकोण से देखते हैं वो अच्छा या बुरा उस घटना को बना देती है। तो जीवन में देखना है कि वो घटना जो है ना वो कैसी है और किस दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं, हर चीज में कुछ ना कुछ कल्याण समाया होता है, इस दृष्टिकोण से अगर हम कोई भी घटना देखते हैं तो वो घटना हमें सुख या दुख की अनुभूति करा देती है। देखिए जब डार्क होता है ना तो आप, जब अंधेरा है तब हम तारों को देख सकते हैं, अब ये तारे होते तो दिन में भी हैं लेकिन उन्हें देख नहीं सकते, क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि सूर्य का प्रकाश होता है। इसी प्रकार से जब निगेटिव, जब जीवन में कोई परीक्षा आती है तभी हमें अपनी गुण और शक्तियों का पता चलता है, ओ मैं ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकता हूँ, और जब जीवन में पॉजिटिव अच्छी सुखी सुख होगा ना तो व्यक्ति को अपनी शक्तियों की अनुभूति नहीं होती है। तो ओनली इन निगेटिव सिचुएशंस ना वी गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिबिट पॉजिटिव क्वालिटी। तो जीवन में अगर परीक्षाएं आती हैं तो उन परीक्षाओं से घबराना नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि वो हमारे अंदर जो शक्तियां हैं उन शक्तियों की अनुभूति कराती हैं। इसीलिए जो हमारे शास्त्र हैं और वो सब में यही कहा गया है कि हर परिस्थिति में अपने की मानसिक स्थिति जो है वो हम लोगों को ऐसी रखनी चाहिए कि परिस्थिति हमारी आत्मा की स्वस्थिति पर कंट्रोल न करे, बल्कि हमारी आत्मा की स्थिति इतनी मजबूत हो वो परिस्थिति को बदल दे। देखिए ऐसा कौन सा है मनुष्य जीवन में क्या चीज चाहता है, क्या चाहता है मनुष्य, हाँ पैसा कमाता है, किस लिए कमाता है, क्या सुख शांति, वेरी गुड, हाँ हाँ, तो सुख यानी हैप्पीनेस, असली हैप्पीनेस का क्या फार्मूला है? एक फार्मूला है, जानते हैं, हैप्पीनेस, हाँ, खुशी, उसका एक फार्मूला है कि अचीवमेंट्स यानी प्राप्तियां डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेशंस यानी कि अपेक्षा। तो और ये प्राप्ति, तो जीवन में जितनी जितनी प्राप्ति होती जाती है तो हैप्पीनेस लेवल बढ़ता जाता है, खुशी बढ़ती जाती है। लेकिन अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशन, वो हम जितनी कम से कम रखेंगे उतना हमारी जीवन में खुशियां वो ज्यादा होंगी। मानो हमारा बच्चा है, बच्चे को पढ़ाना लिखाना हमारा ड्यूटी है, काम है, पढ़ा लिखा के उसको भाई नौकरी धंधा करे, पैसा कमाए, अपने पैरों पर खड़ा हो। लेकिन अगर हम रिटर्न में ये आशा करते हैं कि जब हम बूढ़े होंगे तब ये बच्चा हमारी संभाल करेगा, तब, और ये अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन अगर हमारी पूरी नहीं होती है तो फिर जीवन में दुख होता है। और ज्यादातर केस में अब ये अपेक्षाएं पूरी होने वाली नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज इतना छोटे छोटी ना परिवार, हर एक व्यक्ति अपने ही परिवार में उलझा हुआ है, उसको कहां फुर्सत है इतना सारा सब कुछ देखने की, माता पिता संभाल करना। तो जीवन में यदि हम खुश रहना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए? सेल्फ, हाँ, अपेक्षाएं कम से कम रखें, यहां तक कि पति की पत्नी से अपेक्षा, पत्नी की पति से, बाप की बेटे से, बेटे की बाप से अपेक्षा, ये अपेक्षाएं हम कम से कम रखें। तो ये है खुश रहने का फार्मूला। और शांति का क्या फार्मूला है? पीस का, पीस, जीवन में शांति के लिए क्या फार्मूला है? अशांति क्या चीज लाती है ये सोचिए, अशांति क्या चीज लाती है? हैं? इच्छाएं। जब हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती है, कोई इच्छा है पूर्ण हो जाती है, शांति खुशी आ जाती है। जब इच्छाएं पूर्ण नहीं होती है ना, तो अशांति होती है। इसीलिए शांति का फार्मूला है डिजायर, नंबर ऑफ डिजायर्स, यानी इच्छाएं जो है ना फुलफिल्ड, यानी कि तृप्त इच्छाएं, और नीचे हैं अतृप्त इच्छाएं, यानी नंबर ऑफ डिजायर्स फुलफिल्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिजायर्स अनफुलफिल्ड। यानी जितनी हमारी अतृप्त इच्छाएं होंगी ज्यादा, उतनी शांति मन में कम। तो इच्छाओं पर हमारा नियंत्रण, इसका मतलब क्या हुआ? यानी एम्बिशंस तो होनी चाहिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन इच्छाओं पर हमारा ऐसा नियंत्रण हो कि वो इच्छाएं हमें रूल न करें, इच्छाओं पर हमारा नियंत्रण हो, न कि इच्छा का हमारे ऊपर नियंत्रण हो, वो हमारे। और इसकी पहचान क्या है कि जब इच्छा बहुत बलवती हो जाती है कोई, तो रात को नींद नहीं आने देगी, नींद में डिस्टर्ब, अगर नींद आ भी गई तो नींद के अंदर वो अतृप्त इच्छाएं वो आती रहेंगी। तो समझना चाहिए कि मेरा अपने ऊपर से नियंत्रण कम हो गया है, वो इच्छाओं का मैं दास हो गया, गुलाम हो गया। तो इसलिए स्वप्रशासन की एक ये प्रिंसिपल है, कला है, कि अपना जो विचार है, इच्छाएं हैं, उसके ऊपर हमारा प्रॉपर ये नियंत्रण हो। और इसके लिए और क्या करना है? ऐसी कौन सी चीज है जो परिवार में या ऑफिस में या समाज के अंदर ना जो कटुता पैदा कर देती है? हमारा ऐसा कौन सा संस्कार है, कौन सी ऐसी चीज है, आप अपने अंदर सोचिए, जो आपको दूसरे की बात भी अच्छी नहीं लगती और उससे संबंधों में कटुता आ जाती है, ऐसी कौन सी बात है? विकारों में से एक है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में, ऐसा कौन सी चीज है जो हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाती है? अहंकार, ईगो। ये देखो, इस ईगो को आई के फॉर्म में बताते हैं। आई, मैं हो, मैं ये हूँ, बलवान हूँ, मैं धनवान हूँ। किसी को अपना धन का अभिमान होगा, उससे आपको अपमान की महसूसता आई तो संबंधों में कटुता आ जाएगी। अहंकार, ईगो क्लैश जो होता है, प्रेस्टिज इश्यूज जो बन जाते हैं, वो सारी समस्याओं की जड़ है। और ये अहंकार के कारण जो है ना, ये मनुष्य मनुष्य के बीच में ना ये दीवार खड़ी हो जाती है। जैसे इस मनुष्य को अगर इस मनुष्य से मिलना है तो बड़ा लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, बहुत, क्योंकि बीच में दीवार खड़ी हो गई है। आई, बड़ा आई है। क्या करें इसका, फिर कैसे इस आई को छोटा करें, कैसे छोटा करेंगे? आज सुबह आपको बताया, बता भी दिया उसका सॉल्यूशन, आज सुबह उसका सॉल्यूशन बता दिया। देखो शरीर भी ना ये आई की तरह है ना, पूरा ऊपर से नीचे ईगो है। आज आपको उसका जवाब भी मिल गया। क्या जवाब मिला? आई जो है, इस आई को अगर छोटा करना हो ना, तो क्या करते हैं, छोटे बच्चे को भी नर्सरी केजी में बता देते हैं, भाई ये बड़ा आई है, कैपिटल आई है, और इसके ऊपर अगर बिंदी रख दो तो आई छोटा हो जाता है। बस आज आपको बिंदी रखना ही बताया है, हा? भाई मैं कौन हूँ? आत्मा। बस बिंदी का, अभी तक हम शरीर समझे बैठे थे, उसके ऊपर बस ये समझो कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर के द्वारा मैं कर्म कर रही हूँ। किसी को ये पुरुष रूपी तन मिला है, किसी को स्त्री रूपी वस्त्र मिला हुआ है, लेकिन हम सब बेसिकली आत्मा है। और ये आत्मा इस सृष्टि नाटक पर खेल खेल रही है। किसी को बॉस का पार्ट है, कोई अमीर का पार्ट है, कोई गरीब का, लेकिन ये पार्ट है। बस जब ये पार्ट पूरा हो जाएगा, हम वापस अपने घर चले जाएंगे। फिल्म में जैसे दो हीरो होते हैं, अब मित्र हैं आपस में, फ्रेंड हैं, लेकिन किसी फिल्म में उन्हें एक को हीरो का और एक को विलेन का पार्ट बजाना है, झगड़ा करना है, तो वो झगड़ा भी करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे एक दूसरे को, लेकिन उनकी बुद्धि में है कि ये तो हम शूटिंग कर रहे हैं फिल्म का, और बस जब ये पार्ट पूरा हो जाएगा, फिर कपड़े बदलकर एज ए फ्रेंड हम वापस अपने घर चले जाएंगे। बस यही अगर एटीट्यूड हमारा इस संसार में रहता है ना, यही दृष्टिकोण रहे, भाई किसी को पति का पार्ट है, किसी को पत्नी का है, किसी को बच्चे का है, कोई भाई का पार्ट है, लेकिन हम सब आत्मा है। और बस, तो यहाँ पर हमें जो पार्ट मिला हुआ है वो पार्ट बजाना है। अगर मैं माँ हूँ, बच्चे की पालना करनी है, पार्ट बजाना है, लेकिन उसके अंदर मोह ना हो। वो मोह दुख का कारण बन जाता है। पिता है, पालना करने का मेरा पार्ट है, पैसे कमा के उसको अपने पैरों पर खड़ा कर दें, लेकिन अपेक्षा ये ना रखें कि वो बाद में बुढ़ापे में मेरी संभाल करेगा। तो इसलिए ये जब हम लगा लेते हैं ना, तो बस ईगो क्लैश बंद हो जाता है, नहीं तो झगड़े हो जाते हैं परिवार के अंदर। तो कभी अगर ऐसी परिस्थिति आए, हा? जब बाप और बेटे के बीच में, या सास बहू के बीच में, या भाई भाई के बीच में कहीं पर ईगो क्लैश हो, अहंकार का अगर झगड़ा हो, क्या ये बात हो, तो क्या करना चाहिए ऐसे में? अभी तो आप यहाँ से होके जा रहे हैं ना, यहाँ पर ज्ञान योग सुन के जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या करेंगे? मान लीजिए आप घर जाते हैं, घर में कोई नहीं, वो तो करेंगे, लेकिन व्यवहारिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में अगर जब हम अपने को आत्मा समझेंगे ना, तो जीवन में झुकना आ जाएगा, नम्रता आ जाएगी ऑटोमेटिकली। इसीलिए जैसे कोई अगर गड्ढे में गिर पड़ता है, उसे गड्ढे से निकालना हो तो क्या करेंगे? यूं झुक करके हाथ देंगे और तब उसे निकालेंगे। तो इस रीति से अगर मानो आप बाप हैं, बेटे के साथ, भाई भाई के साथ, या पति पत्नी के साथ अगर कुछ क्लैश होता है, कहीं पर मन मुटाव झगड़ा हुआ, तो क्या करना चाहिए? ऐसे में क्या, जब अहंकार आता है ना, मैं क्यों झुकूं, उसे मेरी बात माननी चाहिए, वो मेरे से छोटा है, मैं अनुभवी हूं, बहुत बातें आएंगी। लेकिन जब कभी ऐसी बात आए तो आप टेम्परेरी झुक जाओ, झुकना भी एक जीवन जीने की कला है। आप टेम्परेरी झुकेंगे, एक बार झुकेंगे, दो बार झुकेंगे, आप देखना तीन बार, दूसरे को जीवन भर के लिए झुका देंगे। लेकिन पहले हमें पहल करनी पड़ेगी। यही बड़ा अच्छा किसी शायर ने भी कहा है, क्या कहा है कि कौन झुक सकता है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। मुर्दा होता है ना, अकड़ जाता है, डेथ हो जाती है, बस मुर्दा अकड़ जाता है। इसी तरह अगर मैं भी अकड़ाऊ, नहीं मैं सही हूँ, उसे मेरी बात माननी चाहिए, अपनी विचारधारा में अगर हम अकड़ जाए ना, इसका मतलब हम जैसे मुर्दे के समान है। झुकना ये जीवन की निशानी, जब तक प्राण है हम झुक सकते हैं, हिल डुल सकते हैं, प्राण निकल जाएंगे शरीर अकड़ जाएगा, खत्म। तो इसीलिए ये झुकना ये भी एक स्वप्रशासन की कला है। अपने अंदर अगर हम ये गुण भी धारण कर लेते हैं ना, ये प्रशासन भी हमें, इसीलिए अपनी शक्तियों को पहचानना चाहिए, आत्मा शक्ति स्वरूप है, तो ये शक्तियों का सदुपयोग है। दूसरे को अपनी शक्ति से दबाना ये शक्ति का दुरुपयोग है। लेकिन अपने पुराने संस्कारों को, अपनी कमी कमजोरियों को जीतना, वो शक्ति की और निशानी है। इसीलिए अभी क्या करना है आपको, अपने एटीट्यूड को बदलना है, अपनी विचारधारा को ना बदलेंगे, और जितना जितना अपनी विचारधारा को बदलते जाएंगे उतना आप आगे। अब देखो इसके अंदर ये बताया ना, मैं आपके यहां गया मानो, हाँ, और धूप में गया, आपने मुझे पानी का गिलास दिया, बस अगर आधा गिलास भरा हुआ है, उसे अगर हम ये देखें, अरे हाफ खाली है, आधा खाली है, बस खाली खाली पोर्शन अगर हम देखेंगे, हमें दुख होगा इन्होंने आधा खाली दिया। लेकिन और उसी को इसके विपरीत अगर हम ये देखेंगे, ओहो आधा पानी है, आधा फुल, चलो इससे मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा। बस तो जीवन में भी हम ये देखते चलें कि मेरे पास क्या क्या है फुल, न कि क्या क्या नहीं है। अगर हम ये देखते चलेंगे ये भी नहीं है, मेरे पड़ोसी का तो बंगला इतना बड़ा है, मेरे पास तो फ्लैट है एक छोटा सा, मेरे पड़ोसी पर तो बड़ी कार आ गई, मेरे पास तो छोटी कार है या स्कूटर है, तो वो सब दुख का कारण। इसीलिए हमारी विचारधारा कैसी है, सारा चीज इस पर निर्भर करता है। हमें याद आता है एक प्रोफेसर साहब, मेडिकल प्रोफेसर साहब, एक लेक्चर कर रहे थे कि शराब पीने से क्या नुकसान होता है। तो लेक्चर करने के बाद उन्होंने एक डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाया कि एक गिलास में पानी लिया, एक गिलास में अल्कोहल ली, शराब लिया, और वो एक्सपेरिमेंट दिखाने लगे कि भाई शराब पीने से क्या नुकसान होता है। तो पहले पानी का एक गिलास लिया, छोटा सा कीड़ा पकड़ा, वो पानी में डाल दिया, कांच का गिलास था, देखा सबने, वो कीड़ा तैरता रहा तैरता रहा, उसे कुछ नहीं हुआ, हेल्दी था, उसे निकाल करके उन्होंने फिर रखा टेबल पर, वो चलने लगा। फिर प्रोफेसर साहब ने उसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करा दूसरे उसमें जिसमें अल्कोहल थी, तो कीड़ा को उसमें डाला तो कीड़ा अंदर गया और जाके थोड़ा जरा झूमने लगा, अल्कोहल थी, बड़े बड़े पी के झूम जाते हैं, ये तो छोटा सा कीड़ा ही था। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, वो कीड़ा एकदम शांत हो गया। प्रोफेसर साहब ने उसे हिलाया, देखा उसमें कोई प्राण नहीं थे, मर गया, और काली मराई नहीं, उसके बाद उसका शरीर जैसे कि उस अल्कोहल में घुलने लगा। प्रोफेसर साहब ने ये दिखा के ना, तो जैसा उन्होंने लेक्चर किया था, उसके बाद प्रोफेसर साहब ने पूछा कि इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो सिंपल था, एक स्टूडेंट ने हाथ खड़ा करा तो प्रोफेसर साहब ने पूछा, हाँ बताओ, तो उसने बताया, सर इससे ये शिक्षा मिलती है कि यदि हम अल्कोहल पियेंगे, शराब पियेंगे, तो पेट के सब कीड़े वीड़े मर जाएंगे और हम हेल्दी रहेंगे। यही शिक्षा मिलती है। ये सोचने का जैसा जिसका ढंग होता है, डर रहा, वैसा ही उसका जीवन बन जाता है। तो इसीलिए हमारे सोचने की पद्धति ना, जितनी हमारी पॉजिटिव होगी, जैसा हमारा सोचने का होगा हम वैसा बन जाएंगे। तो अपना सोचने का ढंग वो रखना चाहिए पॉजिटिव। अब ऐसा कहा गया है कि हाँ, इट इज सेड कि साइलेंस इज गोल्ड, स्पीच इज सिल्वर। यानी जब बोलते हैं वो जैसे चांदी के समान है, और साइलेंट रहना सोने के समान है। इसका भाव क्या है? कई परिस्थितियों में ना, जितना हम शांत रहते हैं तो वो चीज हमें बहुत शक्ति का अनुभव। मछली कांटे में कब फंसती है? मछली को मारने जाते हैं, पकड़ते हैं, कब फंसती है? हाँ, जैसे ही वो मुंह खोलती है ना, कांटे में उसका खाना कुछ लगा हुआ होता है, और उसे खाने के लिए जैसे ही मुंह खोलती है वो फंस जाती है। ऐसे जीवन के अंदर भी ना, हम जब कभी मुंह खोलते हैं बात करने के लिए, मुंह तो खोलना ही पड़ता है, तो कोई बात करा और बस कोई ना कोई समस्या बन गई। इसीलिए कहा जाता है पहले सोचो फिर बोलो, पहले तोलो फिर बोलो। तो इसलिए अपने मन के ऊपर, मन का काम है सोचना। कहते हैं कि भगवान ने जब सृष्टि रची ना, ब्रह्मा जी ने, तो कहते हैं भगवान ने सारे जीव जंतु बना दिए, सब कुछ, पशु पक्षी वगैरह, फिर लास्ट में मनुष्य को बनाया। तो भगवान ने सोचा भाई मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी मैं बना रहा हूं, ऐसा इसमें क्या रखूं कि सबके ऊपर ये रूल करे, और बड़े प्रेम भाव, क्योंकि सारे जितना पशु पक्षी जीव जंतु है सबका हेड है, बड़ा है। तो भगवान ने सब सोच समझ के उसको कि ये प्रेम से रहे, प्यार से रहे, तो जीव में उसको हड्डी नहीं दी। हड्डी जहां होती है वो कड़क होती है ना, और फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसलिए इसने, किसी कवि ने कहा है बड़ा अच्छा कि कुदरत को नहीं थी मंजूर सख्ती इंसान में, इसलिए खुदा ने नहीं बनाई हड्डी जवान में। भगवान ने हड्डी नहीं बनाई जवान में, क्यों? क्योंकि भगवान को यह था कि सख्ती इंसान में ना हो। लेकिन मनुष्य तो बड़ा क्रिएटिव है, मनुष्य ने कहा कोई बात नहीं भगवान जी, आपने हड्डी नहीं बनाई, मैं बिना हड्डी के ही उस जवान में बिना हड्डी के ही काम निकाल लूंगा। इसलिए उसने क्या करा, ऐसा कहा जाता है, ये कहा जाता है कि टंग, टंग हैज गॉट नो बोन बट इट ब्रेक मैनी बोन्स। जवान में हड्डी नहीं होती है लेकिन बहुतों की हड्डियां तोड़ देती है। हाँ, हड्डी नहीं है, आपने कटु वचन बोला, कोई भी गुस्से की बात बोली, क्रोध की बात, बस आपस में झगड़ा हो जाएगा। इसीलिए ये हमेशा ये कोशिश रहे मीठा बोलने की। यहाँ पर स्लोगन भी है, कम बोलो धीरे बोलो मीठा बोलो। वो स्लोगन बड़े अच्छे अच्छे हैं, लिटरेचर वगैरह पर मिलती हैं, आप लेकर के जाना। एक पति पत्नी में थोड़ा झगड़ा हो रहा था, तो पत्नी जरा बस गुस्सा करे जा रही थी, पति बड़ा शांति से सुनता जा रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था। तो पत्नी का और गुस्सा बढ़ता गया, और बस वो बोल भी नहीं रहा था लेकिन इसका गुस्सा, और तो देखा आसपास में मोबाइल पड़ा हुआ था, तो बस गुस्से में तो आदमी का अपना कंट्रोल रहता नहीं है, तो उसने मोबाइल उठा के एकदम फेंका पति की तरफ। उधर बस जैसे ही फेंका, पति ने उसे कैच कर लिया, गिरा नहीं, मोबाइल टूटा नहीं, नुकसान नहीं हुआ, और कैच कर लिया। फिर तो पत्नी को और भी गुस्सा रहा कि अरे मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, बोलते क्यों नहीं? फिर पति ने बोला भाई इनकमिंग फ्री, मोबाइल होता है ना, तो इनकमिंग तो फ्री होता है। तो बस थोड़ा सा एक ही अक्षर बोला लेकिन उसने सिचुएशन को पूरा डाइल्यूट कर दिया, और फिर से क्रोध का वातावरण और ये सब खत्म हो गया, और हार्मोनियस रिलेशनशिप इकट्ठी हो गई। तो इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए जीवन के अंदर कि विपरीत परिस्थितियां हम उनको कैसे सुधार के अनुकूल करें। अब पतंग होती है ना, तो पतंग कब ऊपर जाती है? पतंग तो उड़ाई होगी ना आपने, अगर हवा नहीं है तो पतंग ऊपर नहीं जा सकती। तो इसलिए हवा बहुत तेज, आंधी भी चलती है, हवा जीवन रूपी पतंग उतनी ऊपर ऊपर जाती है। इसीलिए इसमें कहा गया है क्या कि तूफान को तोहफा समझो। जीवन में अगर तूफान आते हैं, प्रॉब्लम आती हैं, समस्याएं आती हैं, उनको तोहफा समझो कि ये मुझे और आगे बढ़ाने के लिए आ रही है। ये है स्वप्रशासन की कला। और साथ में क्या है स्वप्रशासन के लिए व्यक्ति, कि हम जब हम परिस्थिति तो हर एक की अलग अलग होगी, कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, कोई अमीर होगा, कोई गरीब होगा, लेकिन हर परिस्थिति में भी ना हम खुश रहें, वो तब होगा जब हमारे विचार अच्छे हो। हमारे जीवन चाहे साधारण हो, अब देखो ये चला तो रहा है साइकिल और मजा ले रहा है कार का, मैं जैसे शेवरलेट चला रहा हूं, क्यों? थिंक बिग थॉट्स ऑलवेज। साधारण रहे लेकिन जीवन में विचार हमारे महान हो, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग का, वो जीवन में खुशियां प्रदान करेंगे। और इसके लिए जब ये खुशियां आती रहेंगी, क्यों? क्योंकि हम सबके पास जब से हम पैदा होते हैं, हम सबके पास दो शक्तियां होती हैं। कौन सी दो शक्तियां? एक है याद रखने की शक्ति, रिमेम्बर, एक फॉरगेट, भूलने की। जब से हम पैदा होते हैं हम सबके पास ये दोनों शक्तियां, लेकिन ट्रेजेडी क्या है लाइफ की, कि जिस बात को हम याद रखना चाहते हैं वो भूल जाते हैं, और जो बात भूल जानी चाहिए वो बरसों तक याद रहती है। बस ये दोनों शक्तियां हैं, लेकिन उलट करके शक्ति रखती है। बस शक्ति है, मानो कपड़ा फट जाता है तो सुई धागा होगा, सुई है वो ठीक है, लेकिन हम पे सुई भी है और कैंची भी है, तो कैंची का अपना रोल है, कैंची का काटने का, सुई का सिलने का। तो जिसकी जहां जरूरत है उस शक्ति को हम वैसा यूज करेंगे अगर ना, तो वो शक्ति हमें यथार्थ रीति से काम देगी। अब देखिए, टेक टाइम टू थिंक। अब कहते हैं नकल के लिए भी अकल चाहिए। अभी आजकल हेल्थ कॉन्शियसनेस आ रही है, योग करो, प्राणायाम करो, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन जैसे वो भी बताते हैं ना, मैंने देखा कई बार सुना है, बाबा रामदेव जी भी, उनका आता है भाई ये करो, लेकिन अगर शरीर में ये कमर की हड्डी का दर्द है तो ये नहीं करो, अगर हार्ट की बीमारी है तो ये नहीं करो, यानी सीधी की सीधी नकल नहीं करोगी, बस ये प्राणायाम सोचो समझो। अब ये प्राणायाम ये जैसे करा रहा है शीर्षासन वगैरह, अब ये भाई भी देख रहा है बैठा हुआ, और अगर रिवॉल्विंग चेयर पर ही शीर्षासन करने लगेगा तो क्या होगा, है ना? तो इसीलिए सुनो समझो और उसके बाद नकल करो, लेकिन अकल के साथ करो, जस्ट डोंट रिएक्ट। अब देखो इसमें बताया गया है, टेंशन तो जीवन में हर एक के जीवन में आता है, लेकिन कई बार किसी को टेंशन होता है और दूसरे उसे देख के खुश होते हैं, ऐसा भी होता है। अब एक व्यक्ति था, उसने ऑफिस से छुट्टी ली, बड़ा फाइनल वन डे मैच क्रिकेट का आने वाला था, 50-50 मैच हो रहा था ट्रेडिशनल राइवल्स के बीच में, तो उसने कहा आज ऑफिस से छुट्टी ली, अपना आराम से सिगरेट पी रहा है और पैर टेबल पर फैला के सामने टीवी देख रहा है, मैच देखने लगा। बड़ा अच्छा मैच चल रहा था, थोड़ी देर में उसकी पत्नी आई, बच्चे को देकर चली गई, भाई बच्चे के मुंह में दूध की बोतल लगी हुई थी, कि भाई मैच भी देखते रहो, बच्चे को ये दूध भी पिलाते रहो और मैं तब तक घर का काम कर लेती हूँ। ऑल राइट, उसने वो रख लिया बच्चे को, मैच भी देख रहा है, बच्चा भी दूध पीते पीते सो गया, उसने बच्चे को उठा के एक तरफ रख दिया, बोतल भी रख दी और मैच भी देख रहा है, सिगरेट भी एक तरफ अपनी रख दी और मैच देख रहा है। अब मैच जब बिल्कुल फाइनल स्टेज में है, एकदम 48वां 49वां ओवर चल रहा है, कोई भी जीत सकता है, दूसरी तरफ के 8 विकेट आउट हो चुके हैं, इधर भी बस कोई भी ऐसी सिचुएशन, बहुत इंटरेस्टिंग स्टेज में मैच पहुंच गया, तो बच्चा इतनी देर में रोने लगा। अब बस जब उस वक्त तो ध्यान सारा उसका मैच की तरफ था, बच्चा जब रोने लगा, अब जल्दी जल्दी बुद्धि तो उधर है, तो उसने बच्चे को जल्दी उठाया और बोतल अपने मुंह में लगा दी और सिगरेट बच्चे के मुंह में लगा दी। देखो है ना, टेंशन में ऐसा ही होता है। जब टेंशन होता है जीवन में ना, सारे काम उल्टे होने लगते हैं। तो इसीलिए जीवन को टेंशन रहित बनाने के लिए ये जो राजयोग, या अभी और भी आपको आगे आने वाले 2 दिन में बताया जाएगा, ये ज्ञान योग ये सब सीखेंगे तो जीवन में तनाव नहीं होगा, और तनाव अगर होगा भी ना, वो तनाव चला जाए। अब हम करीब करीब लास्ट स्लाइड्स की तरफ आ गए हैं, जीवन में हर्डल्स अगर कहीं हो, हा? अभी तो आप सब लोग ट्रेन से आए होंगे या कोई फ्लाइट से भी, लेकिन बिना प्लेन के फ्लाइट करिए कभी? हाँ, बिना प्लेन के। हाँ, यहाँ पर आपको यही दो, ये चिड़िया उड़ती हैं, पक्षी बिना प्लेन के ही तो उड़ते हैं, तो यहाँ पर भी आप आए हो तो ये आपको दो पंख मिल रहे हैं। कौन से? एक ज्ञान का, एक योग का। जो लेक्चर मिल रहे हैं वो एक पंख हैं, और जो योग का अभ्यास कर रहे हैं आप वो दूसरा है। तो ये दो पंखों को मजबूत करके जाना, ऐसे उड़ सको तो जितनी भी जीवन में रुकावटें आएंगी ना, वो रुकावटें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगी। और इसके लिए अब मन को बस शक्तिशाली बना के जाओ, और मन को शक्तिशाली बनाने के लिए ना प्रतिदिन जब भी सुबह उठे, एकदम उठते ही कोई टीवी ऑन नहीं करो या अखबार नहीं पढ़ो, बस उठते ही सबसे पहले गुड मॉर्निंग करो, हे प्रभु गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, बस उससे पॉजिटिव थॉट कुछ ना कुछ लो, जिससे कि सारा दिन पॉजिटिव रहेगा। फिर ये इसके अंदर बताया गया है, मन को सही दिशा की तरफ बीच बीच में रखो, इसीलिए हमारे यहाँ ट्रैफिक कंट्रोल है, वो आपको और भी बाद में बताया जाएगा। और प्रैक्टिस, बस इसके अंदर ये जो बताया गया है ना, मन को रोज नए नए विचार दो, रोज नया अच्छा एक विचार लिखो, उस पर अभ्यास करो, और इस प्रकार से प्रतिदिन प्रैक्टिस राजयोग मेडिटेशन एवरीडे, और रोज अपना चार्ट लिखें। तो ये राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास से हम मन को और शक्तिशाली ये कर सकते हैं। और रोज रात को सोते समय, सुबह उठते समय तो याद करेंगे, सोते समय क्या करेंगे? सारे दिन भर का भर गया ना मन के अंदर, किसी के साथ मानो कोई तनाव की बात हुई, लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, घर में कचड़े का डब्बा जब भर जाता है तो क्या करते हैं? हाँ, खाली। तो रोज अपनी खोपड़ी का ढक्कन खोल दो, देख रहे हैं ये कैसे खुलेगा? हा? ऐसे कोई खोल नहीं सकते, लेकिन सोने से पहले आप जब दो तीन मिनट का योग अभ्यास करेंगे, आपको महसूस होगा जैसे ये ढक्कन खुला और जैसे कचरा डाल दिया ना, तो दिन भर के वेस्ट थॉट्स हैं, इरिटेशन वाले, क्रोध वाले, नफरत वाले और साहसहीनता वाले, ऐसे विचार जो हैं, बस उन सबको डाल के आज का दिन खत्म हुआ, शो खत्म हुआ, हे प्रभु अब मैं आपकी गोदी में आके विश्राम कर रही हूँ, बस। तो उससे क्या होगा, नींद भी बहुत अच्छी आएगी, और थोड़े घंटों की नींद में ही ऐसा अनुभव होगा, 6 घंटे की नींद में ही अनुभव होगा, 8 घंटे 9 घंटे जैसे हम सो लिया, और फिर अगले दिन सुबह उठेंगे फिर शक्ति का अनुभव होगा। इसीलिए अपने मन को रोज खोल करके इस प्रकार से विचार निकाल दें। और जब आप अभी फीलिंग डाउन, कभी आज जैसे खुश है, हंस रहे हैं या मौज है, जरूरी नहीं कि जब आप जाए हमेशा जीवन में इसी तरह खुश रहे हैं, तो लेकिन फिर से इसी खुशी में लाने के लिए आपको ये बताई जा रही है एक ट्रिक। हाँ, अगर आपका कभी मूड ऐसा है और फिर से ऐसे खुशी के मूड में लाने के लिए, आप यहाँ से बस कोई ऑडियो कैसेट ले जाइए, इसके अंदर देखिए, वीडियो कैसेट ले जाइए, ऑडियो कैसेट ले जाइए, लिटरेचर ले जाइए, कोई करस्पोंडेंस कोर्स वगैरह के द्वारा भी, जहां अगर सेवा केंद्र नहीं है, ये साधन ले जाइए अपने साथ कुछ। उससे क्या, कभी भी मूड ऑफ हो, कभी गम हो, जीवन में खुशी कम हो, पर तुरंत कैसेट लगा दिया, और ये स्व प्रशासन में फिर आत्मा का प्रशासन अपना कंट्रोल शुरू हो जाएगा। और लास्ट में ये है, रिकॉग्नाइज योर फ्रेजाइल लिंक, अपना जो जीवन के अंदर कोई अगर शक्ति है ना, कोई कमजोरी, उस कमी कमजोरी को पहचानिए। देखिए चेन है, इस चेन के अंदर ताला भी बड़ा है, इस खजाना है आपके अंदर, हम सबके अंदर जो 7 गुण है उनका खजाना है, सुख शांति आनंद पवित्रता प्रेम ज्ञान और शक्ति का। लेकिन ये महसूस क्यों नहीं होता? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई जीवन की कड़ी हमारी टूटी है, और अंदर का ये खजाना चोर माया विकार कमजोरियां वो लूट के ले जा रहे हैं। तो जाने से पहले आप क्या करिएगा, एक दिन पहले, मतलब यहाँ पर किसी भी दिन, आज ही चाहे जाके कमरे में जाइएगा और अंदर झांक के देखिएगा मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से मुझे शांति का, शक्ति का, प्रेम का अनुभव नहीं होता। तो हर एक पाएगा अपने अंदर, जो कोई पाएगा कि मेरे अंदर क्रोध है, कोई पाएगा मेरे अंदर ईर्ष्या है, कोई समझेगा कि मेरा टेम्परामेंट लूज है, इसलिए कोई भी जो अपनी कमी हो, जाने से पहले एक कागज पर कि हे प्रभु आज मैं अपनी कमी यहाँ आपके घर में अर्पण करके जा रहा हूँ। हमारे पास ऐसे अनुभव हैं कि जो 25-25 साल के चेन स्मोकर थे, कंटिन्यूअस स्मोकिंग करते रहते थे, यहाँ पर सच्चे दिल से प्रभु के घर में वो अपनी इस कमी को देके गए और उसके बाद से आज इतने साल बीत गए उन्होंने हाथ नहीं लगाया। क्यों? कि आत्मा में इतनी शक्ति आ गई कि बस उस कमजोरी को। और ये आज का अंतिम लास्ट स्लाइड है, क्या इंस्पायरेशन, गणेश जी के साथ से हम क्या इंस्पायरेशन ले सकते हैं। गणेश जी का सिर बड़ा होता है ना, तो बड़ा सिर जो है बड़े विचारों का प्रतीक है। हम महान विचार करें, ऐसा ना करें भाई ये नहीं हो सकता, कई बार मैंने ये कोशिश करी, मैं क्रोध को नहीं जीत सका, नहीं, बस हर दिन जिस दिन आंख खुले उस दिन नया सवेरा। तो इसीलिए बड़े विचार लाए, इसका मतलब ये गणेश जी की तरह बड़ा विचार, और बड़े कान यानी कि सबकी सुने जीवन में, लार्ज ईयर इस बात का प्रतीक है कि दूसरे के विचार को सुने, और नैरो आई छोटी आंख योग का प्रतीक। जब योग भक्ति पूजा करते हैं तो आंख बंद होने लगती है ना, आरती करो या कुछ भी पूजा करो, तो ये छोटी आंख इस बात का प्रतीक है, योग का, ध्यान का प्रतीक। और लास्ट लॉन्ग नोज, लंबी नाक, कि हर जगह कहीं ना कहीं नई चीज, यहाँ पर आप आए हो बहुत नई बातें मिलेंगी, उन नयों को समझ करके जीवन के अंदर धारण करने का पुरुषार्थ करिएगा। और छोटा मुंह इस बात का प्रतीक, कम बोलने का, कान बड़े सुनो लेकिन बोलो कम, दो कान हैं, जितना सुनो मुंह एक है उससे आधा बोलो। और अंत में लास्ट में बड़ा पेट गणेश जी का किस बात का प्रतीक है, हाँ? अभी बाद में लंच ब्रेक भी होगा ना, हाँ, तो ये समाने की शक्ति का प्रतीक, किसी की कोई बात सुने कमी कमजोरी की, घर के जैसे सभ्य की बात समा लेते हैं ऐसे बाहर के भी ना बात को सुने। तो आज यहाँ से ये शिक्षा लेकर के जाएं कि स्वप्रशासन के लिए मुझे जो बातें सुनी हैं उसे सुनने तक ही सीमित नहीं रखना है, यहाँ सब जो भी होता है रिकॉर्ड भी होता है, कैसेट लेके जाएंगे लिख करके, इसीलिए डायरी आपको दी गई है कि उस डायरी में लिखते रहे, जो जो क्लास होती है उनको लिखते रहे, और फिर आपके जीवन में भी खुशी और शांति शक्ति सब आ जाएगी और आपका भी चेहरा सदा के लिए खुशनुमा। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति।